تفسیر دیکھتے ہیں آج کے سبق میں. آیت نمبر 272, 273, 274, ان میں وہی جو پچھلی بحث چلی آ رہی تھی صدقے سے متعلق اس کو ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 275 سے ربا کے بارے میں آیات شروع ہو جائیں گی جو مکمل ہوں گی آیت 280 پہ جا کے, اور آیت 281 وہ عظیم آیت جو آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یعنی جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی ہے نا, کیونکہ دیکھیں جو قرآن پاک کی ترتیب ہے جس لحاظ سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں نا, یہ نزولی ترتیب تھوڑا ہی ہے, نازل تھوڑا ہی اس طرح ہوا تھا کہ سورہ بقرہ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی, دوسرے نمبر پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی, تیسرے نمبر پہ سورہ آل عمران نازل ہوئی, ایسے تو نہیں ہوا نا. سب سے پہلے تو سورۃ الفلق کی سورہ علق کی شروع کی آیات نازل ہوئی تھی نا اقرا سے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے نا, یہ جو اس وقت جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اس طرح جو سورت اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھ دو. کوئی آیت اترتی تھی یا چند آیات اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد اس آیت کو لکھ دو. ٹھیک ہے, تو یہ آیت جو ہے نا آیت 281 یہ ہے آخری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان جو ہے نا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے محتاجی کا. جب تم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگتے ہو تو وہ کہتا ہے ہائے کیا کر رہی ہو, تمہیں خود تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, صحیح تم دے رہے ہو آگے سے آگے, تو تم خود تو سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو. اچھا, اب انسان جو ہوتا ہے نا وہ بہت ایک دم وہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی میری تو اتنی, اس کی نا فقر اس کے سامنے لا لا کے دکھاتا ہے شیطان, اس کو یہ کر کے دکھاتا ہے کہ جیسے تمہاری اپنے لیے کیا پھر بچے گا, تم کیا کرو گی, تم نے تو یہ ابھی خریدنا ہے, یہ خریدنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو انسان پھر آ کے اتنا اس معاملے کے اندر تنگ دل ہو جاتا ہے, مٹھی نہیں کھولتا. یہ شیطان کے وعدے ہیں جو فریب کے سوا کچھ نہیں. تو خیر کے کاموں میں شیطان یہ کراتا ہے صرف جب اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے. اور کیا کرتا ہے, وہ یامرکم بالفحشاء, اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا. یعنی شیطان فقر سے کا وعدہ کرتا ہے کہ اب تم نے خرچ کیا نا تو دیکھ دینا پھر یہ ہو جائے گا, پھر کہاں سے کرو گی, کل کو تمہاری یہ یہ ضرورت ہے. ایسی ضرورتیں ذہن میں لے کر آتا ہے, ایسے دل کے اندر ڈالتا ہے خیال, اور وہاں سے روک دیتا ہے. اور حکم کس چیز کا دیتا ہے, فحاشی کا. فحاشی کے اندر صرف زناکاری یا ایسی اور کوئی وہ والی صرف بات نہیں ہے, ہر اللہ کی نافرمانی جس میں انسان حد سے نکل جائے نا وہ سب فحاشی کے کام ہے. تو کیسے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں روک دیا لگانے سے, اب کہاں لگائیں مال, اب دل میں ڈالتا ہے فلاں جگہ لگا دو, فلاں جگہ لگا دو, فضول جگہوں پہ لگوا دیتا ہے. اب کچھ بچتا ہی نہیں اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے. تو برائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ جو بہت مالدار ہوتے وہ اکثر ان کا مال جو لگتا ہے نا وہ نیکی کی جگہ پہ نہیں لگ رہا ہوتا, برائی کی جگہوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. آپ ظاہر ہے دیکھیں, خود ہی سوچیں, جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں دے گا, مال اس کے پاس بہت ہے, اب مال جمع ہوتا جا رہا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, اب اس کو یہ کھجلی ہونے لگتی ہے کہ میں اس مال کو دکھاؤں تو صحیح لوگوں کو ایسا پتا چلے گا ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. اب وہ دکھاوے کے لیے وہی والی بات آ گئی نا, شو آف, ریاکاری, دکھانا, یہ چیز زندگی کا ایک یعنی مقصد ہی بن گیا کہ اب جو چیز ہمارے پاس ہے وہ گھر میں اگر پڑی ہوئی, گھر میں پہن لوں گی, گھر میں کھا لوں گی, گھر میں کچھ کروں گی تو یہ لوگوں کو کیسے پتا چلے. تو اب دکھانا ہے, اب دکھانے کے لیے بھی تو کوئی پلیٹ فارم چاہیے. اب کوئی پارٹی کریں گے, کوئی شادی ہوگی یا کوئی اور اس طرح کا کوئی فنکشن رکھ لیں گے جس میں انتہائی اسراف, شو آف, सारे चीज ही शो ऑफ होती है, पैसे की नुमाइश। फिर आगे से आगे मुकाबलाबाजियां शुरू हो जाती हैं, उसने इतने का किया तो मैं इतने करूं, वो उसने इतनी चीजें की दी थी तो मैं इतनी दूं। अब शादियों में भी क्या होता है, माल की नुमाइश, जिस्मों की नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश, जेवरों की नुमाइश, ऐसे लगता है कि एग्जीबिशन लगी हुई। और भी फहाशी के कितने सारे काम होते हैं, नाच गाने हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें, मेहंदियों के नाम के ऊपर क्या क्या फहाशी होती है। कहता है वहां पे लगाओ, इस्लाम में तो ये चीजें नहीं थी, इसने इन चीजों पे लगवाया। इस्लाम में तो निकाह और वलीमा। अब जब आपका माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा ही नहीं तो फिर कहीं तो लगेगा ना, तिजोरियों में तो नहीं बंद पड़ा रहेगा, तो कहीं तो लगाना है ना। तो अब बजाय इसके के लोगों की भूख मिटाने के लिए लगाते, लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए लगाते, फहाशी और नुमाइश के कामों पे लगा रहे हैं। अब सोच लेने फिर ऐसे माशरे का क्या हाल होगा, जहां पे लोग हर वक्त, आप देखें तो हमारे मुल्कों में लोग इस चीज का रोना रोते रहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, हाय 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 हाय। लेकिन उन्हीं लोगों की शादियां देखें तो नुमाइशी प्रोग्राम लगता है, फिर समझ नहीं आती कि अब फिर कहां से, फिर तो जिंदगी सादा हो जानी चाहिए ना, फिर तो शादियां इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, वो एक शो ऑफ का प्लेटफॉर्म बनी होती, तो तब कहां से आ गया। इसलिए कि शैतान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से तो रोकता है। हाँ, जब पार्लर पे जाएंगे तो तब नहीं खर्च करने पे रोकेगा, मेहंदी करनी होगी तब नहीं रोकेगा, कॉन्सर्ट्स पे जाना होगा तब नहीं रोकेगा, फिल्मों पे लगाने के लिए नहीं रोकेगा, फायरवर्क्स करनी है और घरों के ऊपर लाइटें लगानी है, उससे नहीं रोकेगा कि उस पर खर्च करो। फिर इंसान क्या कहता है, लोग बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, अगर इन पे ही ना खर्च किया तो फिर क्या। फिर कभी इंसान कहता है लोग क्या खाने के लिए तो कमाते हैं, और खाया ही ना अच्छा तो फिर क्या। तो इंसान कितना उसके ऊपर खर्च करता है, फिर सैरो तफरी के ऊपर कितना खर्च होता है, उल्टे कामों पे कितना खर्च होता है, देखे ना सही। आप गिनने लगे आप तो कितने ही सारे बुराई के, खुली बुराई के, गुनाह के काम है जिन पे खर्च करा रहा है शैतान, और रोक कहाँ रहा है कि बस यहाँ पे ना दें, कहीं डोनेशन देना पड़ गया, कहीं किसी की जरूरत सामने आ गई तो वहां पे 1 डॉलर निकालना भी इंसान के लिए ऐसे हो जाता है कि नहीं क्या है, हमारे तो अपनी इतनी जरूरतें हैं। तो ये साफ समझ जाए करें कि ये शैतान के फरेब है। जब इंसान बाजार जाता है तब तो कभी नहीं सोचता कि हाय मैं गरीब हो जाऊंगा, इतना खर्च कर लिया तो, है ना। सोचिए जरा, जब हम किसी बुटीक पे जाते हैं क्या कभी ये ख्याल आता है कि हाय कितने, इतना खर्च कर लिया तो क्या होगा। वल्लाहु याइदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह वादा करता है, एक अल्लाह का भी वादा है। शैतान ने 2 वादे किए ना, एक फकर का और फिर फहाशी का हुक्म देता है, अल्लाह का वादा है मगफिरत का और फजल का। अल्लाह वादा करता है और शैतान वादा करता है, और शैतान के वादे झूठे हैं और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो तो तुम्हारे लिए बख्शिश है, यानी सदका करना इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाता है, बख्शिश का जरिया बन जाता है। हदीस में है ना, सदका गुनाहों की आग को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। गुनाहों की वजह से हमने आग अपने लिए लगाई भी है ना, जहन्नुम की आग तैयार की भी, तो सदके की वजह से वो बुझ जाती है। और फजल, अल्लाह ताला का फजल भी, अल्लाह ताला अपने फजल का भी वादा देता है। फजल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंसान का हक ना हो, हक से ज्यादा किसी को देना हमारा हक नहीं है, जो हमें अल्लाह से मिला है वो हमारा हक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें देता है तो ये उसका फजल है। यानी क्या मुराद है, रिस्क में कुशादगी। दुनिया में क्या होगा, रिस्क में कुशादगी होगी। मैंने आपको जैसे बताया था 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखरत में मिलेगा, फिर 700 गुना का भी अल्लाह का वादा है, और बेगैर हिसाब का भी है, बगैर हिसाब के अल्लाह बेहिसाब देगा उसका भी वादा है। तो वो तो सारा उस पर डिपेंड करता है ना, आपकी नीयत, आपका इखलास कितना है। तो अल्लाह का वादा क्या है, मगफिरत का और फजल का। अब हम चूज कर सकते हैं हमने कहाँ खर्च करना है, हमें किसके वादे पे ज्यादा यकीन है, अल्लाह के या शैतान के। अल्लाह कहता है तुम दो, तो मैं मगफिरत करूंगा और तुम्हें और ज्यादा दूंगा, फजल दूंगा अपना। शैतान कहता तुम फकीर हो जाओगे, मैं वादा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि सदका करने से माल कम नहीं होता। ये देखे, जो सच्चे हैं, जो सादिक हैं, खुद सादिक और अमीन कहलाते थे, काफिर भी जिनको सादिक और अमीन कहते थे, उन्होंने कसम खा के अगर फरमा दिए तो वो कितनी सच्ची बात होगी कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि सदका करने से माल कम नहीं होता। और शैतान कहता है कि कम हो जाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसत वाला है और जानने वाला है, बहुत वसत वाला है, उसके खजाने बेइंतहा हैं, इतने खजाने उसके। ये ना सोचो कि वो इतना देगा तो फिर कैसे देगा, सबको देगा। अच्छा नहीं, अपने आप के ऊपर ना प्रयास करो। अल्लाह वसत वाला है, वो गिन गिन के नहीं देता। हम तो गिन गिन के रखते है ना, वो गिन गिन के नहीं देता, वो बेहिसाब देता है। और वो अलीम भी है, इल्म रखने वाला है, हर चीज का जानने वाला है। उसके तो एक कुन कहने के ऊपर हर जिंदगी के कच्चे छठे सारे सामने आ जाएंगे। वो ऐसा अलीम है कि हर एक का हर अमल जानता है। हमने आयतल कुर्सी की तफसीर में देखा था ना कि अल्लाह ताला कितना इल्म वाला है, कैसा इल्म वाला है। खैर, उसके इल्म की जो हद है उस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। ये भी नहीं सही से अल्लाह ताला की सिफत को यकीन करें, हम सही से नहीं जान सकते। वो हम अपनी छोटी सी लैंग्वेज के अंदर और छोटे से दिमाग के साथ इतना कह देते हैं, हाँ अल्लाह को ये भी इल्म है, जितनी हम सांस ले रहे हैं अल्लाह को ये भी इल्म है, हमारे जिस्म में कितने बाल हैं अल्लाह को ये भी इल्म है, हम कितनी दफा आंख चिपका रहे हैं। पर हमसे ज्यादा से ज्यादा हम तो कमजोर लोग, कुंद जहन लोग इतना सही सिर्फ जान सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जैसा अलीम है ना, उसके इल्म की वसतों को, डेप्थ को हम नहीं पा सकते, हम जान भी नहीं सकते। पाना तो खैर, उसके इल्म तक जाना तो नामुमकिन है, हम ये भी नहीं जान सकते उसका इल्म है कितना। सुभान अल्लाह, वो वासिउन अलीम है, उसको पता है सबका कि वो क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत देता है जिसको वो चाहता है, जिसको वो चाहता है हिकमत देता। क्या चीज है हिकमत, हिकमत का माना क्या है? देखिए, हिकमत के बहुत सारे माने बयान किए गए हैं, आप सारे ही लिख लें। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान की समझ हिकमत है। इसी तरह हिकमत से मुराद दीन का इल्म है, हिकमत से मुराद खशियत है, दीन और दुनिया की इस्लाह है, सही वक्त पर सही फैसला करने की जो कुव्वत है ना, एट द राइट टाइम राइट बात करना, राइट डिसीजन लेना, इसकी जो पावर है ना, वो भी हिकमत है। जैसे होता है ना, हमें बाद में बात याद आती है, ओ ये बात कहनी थी मुझे, तो ये चाहिए था, मैं ये बोलती, ये हिकमत के खिलाफ है। हिकमत का मतलब होता है इंसान को राइट टाइम पे राइट बात आ जाए, समझ बूझ जो है, इनसाइट, किस मौके पे क्या करना चाहिए, ये हिकमत है। समझ आई? तो ये सारी हिकमतें हैं। हाँ, हिकमत ये नहीं है सिर्फ पढ़ना, ये हिकमत नहीं है। हम कहेंगे मैंने इतने पारे खत्म कर लिए, मेरे पास हिकमत आ गई। पढ़ लेने से जरूरी नहीं है कि हर एक को हिकमत भी आ जाए, ठीक है। हाँ, पढ़ाई से, इल्म से आती तो है हिकमत, जैसे दीन का, कुरान की समझ हिकमत है। और सिर्फ एक दफा पढ़ लेना, ये हो सकता है हर एक को हिकमत ना आए। तो हिकमत दीन भी है, फिर हर अमल के पीछे जो हिकमत है वो भी हिकमत है ना। हमें जैसे हम कहते हैं कि इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, वो भी हिकमत है। क्या कि क्या रूह है, इसका मकसद क्या है, इसका आयतों की हिकमत, वो भी हिकमत है। अल्लाह ताला के किसी हुक्म की हिकमत, ये भी हिकमत है। फिर कौन सा अमल अफजल है, कौन सा उसे सेकंड दर्जे पे है, कौन सा अमल इस वक्त मुझे करना चाहिए जो मुझे ज्यादा सवाब इससे मैं हासिल कर सकूंगी, वो भी हिकमत है। फिर माल में भी हिकमत होती है ना, कि माल को किस जगह पे मैंने खर्च करना है, ये भी इंसान को हिकमत से ही आता है ना, जिसमें मेरे आखरत का फायदा हो, और किस जगह पे मेरा कितना फायदा मुझे मिलेगा, और दुनिया का भी फायदा मिल जाए। तो ये भी एक मत है कि इंसान दुनिया में किस तरह से खर्च करता है। तो यानी ये सारी हिकमत की बातें हैं। तो हम आम जुबान में भी बोलते हैं जी इस चीज में बड़ी हिकमत आई है। तो अब उम्मीद है आपको ये बात इतनी तो समझ आ गई होगी। अब जहां तक इस चीज का सवाल है कि जो दीन का इल्म है या कुरान और हदीस से महारत है, इसको भी हिकमत कहते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कुरान का वो इल्म या हदीस का वो इल्म जिसमें इंसान को इन डेप्थ इल्म हो, यानी कुरान में जो हलाल हराम है, जो इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे अभी हमने मिसालें पढ़ी है ना, उनकी सही समझ, फिर इसी तरह नासिख और मनसूख का इल्म, ये भी हमने पढ़ा था कि क्या होती नासिख और मनसूख, और फिर ये सारी चीजों के ना, ये पढ़ने को तो इसे हर एक बंदा पढ़ सकता है, लेकिन उसकी तफसीर, इसकी समझ, ये है हिकमत। और ये अल्लाह जिसको चाहता है इनायत फरमाता है कि वो असल माने को पाले, वो बात की डेप्थ तक पहुंच जाए, जुबान से उसके सही मतलब अदा हो, सच्चा इल्म, सही समझ इसे अदा हो, और इसकी वजह से फिर अल्लाह का डर उसके दिल में आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए एक मरफू हदीस में भी है कि हिकमत का राज अल्लाह का डर है, जो तो पीक है ना हिकमत की, वो जिस्ट जो हिकमत की है असल, वो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर। ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के इल्म के बड़े बड़े माहिर होते हैं, और दुनिया का जो काम है ना, चाहे वो बिजनेस है, फैशन है, सियासत है, इसमें उनको बड़ी समझ होती है, लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल अंधे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया भी इल्म में इतने माहिर नहीं है, कमजोर है, लेकिन कुरान के हदीस के माहिर हैं। बस ये है वो हिकमत, जिसको अल्लाह चाहे उसको दे दे और जिसको ना चाहे उसको ना दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह ने हिकमत दे दी ना, उसको बहुत बड़ी भलाई मिल गई, बहुत बड़ी नेमत मिल गई। ये बात समझने की है। ये तो है ना, हम समझते हैं कि बड़ी भलाई मुझे मिल गई, मुझे माल मिल गया, बड़ी जॉब मिल गई, तो मुझे बहुत भलाई मिल गई, जी मैं हमारा बिजनेस तरक्की कर गया, बहुत बड़ी खैर हमें मिल गई, बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी खैर मिल गई। हालांकि यहाँ अल्लाह ताला ने क्या चीज फरमाई है, मौलाना माजिद दरियाबंदी फरमाते हैं कि हिकमत वो नेमत है जिसके मुकाबले में कोई और नेमत नहीं, कोई और नेमत नहीं है इसके मुकाबले में। हाँ जी, मौलाना माजिद दरियाबादी इनका नाम है, जिन्होंने ये बताया फरमाया कि इतनी बड़ी ये नेमत है। तो हम और चीजों को तो नेमत समझते हैं, हिकमत हमारे नजदीक कोई नेमत ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, माल नहीं, दौलत नहीं, और चीजें नहीं, हिकमत खैर कसीर है। और चूंकि इसकी खैर नजर नहीं ना आती, माल के हमें फायदे नजर आते हैं, हिकमत के नजर नहीं आते, तो हमें इसकी कोई पाने की, इसकी तलब, इसका शौक ही नहीं है कि हमें हिकमत मिले। हिकमत का फायदा, इसकी उसकी खैर होना उसको पता चलती है जिसको ये मिल जाए, मगर ये मिलती बड़ी मुश्किल से असल में। तो ये अल्लाह का फैसला है, जिसको वो दे उसको ही मिलती है, और अल्लाह उसके लिए ही फैसला फरमाता है ना जो खुद तलब भी रखता है। अब आप हिकमत ले रहे हैं, ये बताएं। चलिए एक हदीस बताती हूँ आपको, उसके बाद आप बताइएगा। मुसनद अहमद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारी रोजियां तुमने तकसीम की है ना, तुम्हारे अखलाक भी तुमने बांट ली है। यानी इससे क्या पता चला, अखलाक भी अल्लाह ताला तकसीम करता है लोगों में। दुनिया तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी, ऐसा है ना। फिरौन को मिली थी ना दुनिया, नमरूद को भी मिली थी दुनिया, तो अपने दोस्तों को भी देता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को, कितनी दुनिया मिली, और दुश्मनों को भी देता है। हाँ, दीन सिर्फ दोस्तों को ही अता फरमाता है, सुबहान अल्लाह। और अगर आपको दीन मिल रहा है ना, तो मुबारक हो आपको, दीन सिर्फ दोस्तों को ही अता फरमाता है, और जिसे दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी जुबान मुसलमान ना हो जाए, कोई बंदा मोमिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ोसी उसकी ईजाओं से बेखौफ ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इससे क्या पता चला आपको? दीन सिर्फ अल्लाह अपने दोस्तों को देता है, और जिसको दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है। और हिकमत भी क्या है? दीन का इल्म। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं, यानी हिकमत। मैंने बताया ना हिकमत क्या है, दीन की समझ। तो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं उसी को देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी भलाई है, ऐसे ही सबको नहीं बांटी जा रही। सबको तो पैसा सबको ही अल्लाह ताला दे देते हैं, काफरों को भी मिला है, उनको भी मिला है, मुनाफिकों को भी, मुशरिकीन को भी, ठीक है सबको अल्लाह ताला दे देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो कोई ऐसी खैर कसीर नहीं है। मगर जो खैर कसीर है ना वो अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता, उसके लिए स्पेशल लोग हैं जिनको अल्लाह ताला देता है, और वो अल्लाह के महबूब है। जिसको दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है, यानी जिसको हिकमत मिल जाए, तो इसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत सीखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखें। एक सहाबी कोई सवाल फरमाते थे ना, मिसाल के तौर पे हम हदीस में पढ़ते हैं अफजल अमल कौन सा है, तो आप देखें किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमाते हैं, दूसरे को दूसरी बात फरमाते हैं, क्यों? अफजल अमल बदल गया क्या? नहीं, हिकमत है ये, किसको क्या बताना है, किसके हालात क्या है, किसमें क्या कमजोरी है। फिर इसी तरह आपकी डीलिंग जो है, जो नए मुसलमानों के साथ थी वो कैसी थी, और जो पहले के हैं पुराने हैं उनके साथ कैसी थी। फिर शुरू के दिनों में आपके किस तरह की मतलब आपने लोगों को किस तरह से डील किया, कैसे उनको चीजों का बताया और कैसे उनके साथ सारे मामलात किए, और बाद में कैसे किए, सारी हिकमत की बातें। तो अल्लाह ताला से हिकमत मांगे हैं, क्योंकि हिकमत अगर हमें मिल गई ना तो हमें खैरे कसीर मिल गई। मगर ये हिकमत की बात एकदम यहाँ पे क्यों आ गई? अभी तो इन्फाक की बात आ रही थी और आगे भी इन्फाक की आ रही है। हाँ, तो पता चलता है कि हिकमत भी असल में सखावत से ही आती है। अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करता है ना तो उसे हिकमत में से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नदरतुम मिन नदरिन फइन्नल्लाहा यालमु। अल्लाहु अकबर, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं? जो भी तुम खर्च करो, कुछ भी तुम खर्च करते हो, जो भी तुम्हारा एक्सपेंस है, चाहे तुम अपनी जात पे खर्च करो, घर वालों पे खर्च करो, दोस्तों पे खर्च करो, बीवी के मुंह में एक लुकमा डालते हो, बच्चों के लिए कुछ लाते हो, सब या जो तुम नजर मानते हो, कोई भी नजर, मैं नजरें नजरों में से कोई भी एक नजर मानते हो, तो अल्लाह उसको जानता है। वो अल्लाह जो दाने को जमीन में आप डाल के छुपा देते हैं उसका इल्म रखता है, तो क्या अल्लाह इसको नहीं जानता हुआ कि आपका डॉलर डॉलर कहाँ खर्च हो रहा है? वो जानता है। इस आयत को जब आप बाजार में जाए ना तब याद रखें कि मैं एक भी डॉलर निकाल रही हूँ अपने पर्स से, अल्लाह इसको देख रहा है, अल्लाह जानता है। नफका होता है ना, जो आप कहते हैं नान नफका क्या चीज है, वो माल भी जो जरूरत जरूरियात जिंदगी पे खर्च किया जाए उसको नान नफका कहते हैं। तो डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना अल्लाह उनको जानता है। और ये जो 5 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जो हशर के मैदान में पूछे जाएंगे, अब वो पता है ना, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, माल कहाँ खर्च किया? अल्लाह हम कैसे इस चीज का जवाब देंगे? हमें तो खुद ही नहीं पता चलता हमने कहाँ खर्च किया। बाद चीजों पे इतना उड़ा देते हैं, बाद चीजों पे बिल्कुल ही मुट्ठी बंद कर देते हैं। या जो तुमने नजर मानी, कोई भी नजर जो आप मानते हैं। अच्छा, नजर मानना क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना मन्नत मानना। तो मन्नत मानना ठीक तो है, मान सकते हैं आप, लेकिन वो मन्नत अल्लाह के लिए हो, उसकी रजा के लिए हो और उसके रास्ते में हो। किसी बुजुर्ग के नाम की मन्नत मानना, किसी कब्र वाले के नाम की मन्नत मानना, किसी दरबार की, किसी मिजार की मन्नत मानना कि मैं वहां पे ये करूंगी, चादर चढ़ाऊंगी, फलां करूंगी, ये करूंगी, ये नहीं सही। और हाँ, अल्लाह के नाम की आप मान सकते हैं, ठीक है। मगर मन्नत जो होती है ना, एक मन्नत जो है वो कोई इतनी ज्यादा पसंदीदा नहीं है। और वो कौन सी है जिसमें आप ये कहते हैं अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं 100 नफल पढ़ूंगी। ठीक है, आप पढ़ तो ले, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं मस्जिद में इतने पैसे दूंगी। तो आपने कर तो लिया, लेकिन देखिए अल्लाह के साथ सौदेबाजियां ना किया करें। सौदा अल्लाह के साथ करना सही नहीं है। यानी कोई नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, क्या आप अल्लाह को कोई लालच दे रहे हैं कि तूने अगर ये कर दिया तो मैं इतने दूंगी। वो अल्लाह गनी है, वो कोई आपके ये 100 डॉलर 100 रुपए के पीछे बैठा हुआ है। इसीलिए हदीस में आता है नजर ना किसी चीज को आगे करती है ना पीछे, हाँ बखील से उसके जरिए माल निकलवा लिया जाता है। यानी नजर मानने से ये ना समझे कि वो आपका काम हो जाएगा इस वजह से कि आपने कह दी मैंने वहां पे 100 डॉलर डालूंगी, नहीं, बल्कि इसके जरिए बखील से उसका माल निकलवा लिया जाता है। वैसे तो उसने देना नहीं था, चलो आप मन्नत मान के ही चलो दे दिया। हाँ, ये आप मन्नत, एक अच्छी मन्नत भी होती है, वो ये है कि जैसे अब कोई इंसान मन्नत मान ले कि मैं मिसाल के तौर पे मैं अब एवरी डे 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ा करूंगी, मिसाल के तौर पे ईशा के बाद मैं 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ा करूंगी, ये एक अच्छी मन्नत है। आपने किसी चीज के साथ उसको कंडीशन नहीं किया कि ये होगा अल्लाह तू ये करेगा तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि वो आपका काम हो ना हो, लेकिन आप जरूर जो आपने कहा होता है वो कर लिया करें। मिसल मैंने कहा मेरा ये काम हो तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं। अब वो काम मेरा होता है या नहीं होता, मैंने जो कहा है कि मैं इतने पैसे दूंगी वो मैं पैसे निकाल दूं, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ सौदेबाजी नहीं करती। हाँ, ये इंसान कह सकता है कि भाई मैं शुक्राने के तौर पे ये चीज करूंगी, तो शुक्र तो वैसे ही हर वक्त ही करना चाहिए अदा। तो समझ आ गई ना कि नजर मानने की इजाजत तो है, लेकिन ऐसी नजर कोई ज्यादा कोई पसंदीदा नहीं है, जैसे हमने अपना नॉर्म बनाया हुआ है कि ये हम इस तरह से मन्नत मान मान के और उसके बाद सोचे कि पता नहीं इस लालच में हमने अल्लाह से कोई काम, अल्लाह माफ करे ना उस बिल्ला, अल्लाह माफ करे कि हमने अल्लाह से कोई काम करवा लेना अपना, तो ये कोई नाउज़ुबिल्ला कोई लालच देना नहीं है कि अल्लाह ताला को ऐसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप नजर मानते हो ना, अल्लाह को पता है इस चीज का। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, याद रखना जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जालिम कौन है यहाँ पे, किन को जालिम कहा गया, जो बुखल से काम ले या जो अपनी नजर मान तो लेते हैं उसके बाद पूरी ही नहीं करते, उस वक्त जज्बात में आके बस मैं तो ये करूंगी, मैं तो अब हर रोज रोजा रखूंगी, मैं हर रोज तहज्जुद पे उठूंगी, अब पूरी नहीं की जा रही, अब मुसीबत पड़ी हुई है, तो भाई फिर ऐसी नजरें मानते क्यों। तो ऐसे लोग जालिम है, उनका फिर कोई मददगार नहीं होगा अल्लाह के यहाँ, कोई उनको अल्लाह के यहाँ वहां पे बचाने वाला नहीं होगा। और इसी तरह जो पहली मैंने आपको बात कही कि जो बुखल से काम लेते हैं, यानी सदका नहीं करते, सही जगह पे खर्च नहीं करते, इधर उधर खर्च कर रहे हैं, अल्लाह को सब पता है तुम कहाँ खर्च कर रहे हो, वो सब जानता है, सब रिकॉर्ड है उसके पास। उस दिन उसने सारा सिर्फ कुन कहना तुम्हारी जिंदगी का सारा रिकॉर्ड निकल आएगा, तो फिर जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा वहां। तुबदु सदकाति फनिअम्मा हिया, अगर तुम सदके को जाहिर करके देते हो तो भी अच्छा है, जाहिर करना भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जाहिर करने से क्या फायदा हो जाता है, और भी कई लोगों को मोटिवेशन हो जाती है देने की। देखते ना आप कई दफा वो मस्जिदों वगैरह में भी करते हैं, किस लिए वो ऐलान कर रहे होते हैं कि फला ने इतना दिया फला, तो वैसे उसे क्या होता है दूसरे लोग भी दें। तो चाहे तुम ऐलान करके दो चलो वो भी अच्छा है, इससे दूसरों को चलो कोई तरगीब मिल जाती है, लेकिन वो तब तक अच्छा है जब तक एज लॉन्ग एज आपके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि जो है ना मुझे भी शोहरत मिल जाए, ठीक है, वो तभी अच्छा है आपके लिए जबकि आपकी यही ख्वाहिश हो कि चलो मैं पहल करती हूँ, मेरे पहल करने से हो सकता है कि मेरे पीछे मुझे देख के कितने लोग दें तो फिर उसका अजर भी मुझे मिल जाएगा, है ना। हदीस में है ना, नेकी का रास्ता दिखाने वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा जितना नेकी करने वाले को। तो आप किसी को मसलन बता देती हैं कि देखिए वहां पे इतनी इस वक्त जरूरत है और आप वहां पे दें, तो वो भी अगर देते हैं तो आपको भी अजर मिल जाता है। तो अच्छा, बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये तुबदुत सदकात क्या है, जकात की तरफ इशारा है, जकात जाहिर करके देनी चाहिए, ठीक है, जकात का बताना चाहिए कि जकात दे दी, क्योंकि एक फर्ज है ना ये। वा इन तुखफुहा वा तूहल फुकारा फहुवा खैरुन, और अगर तुम छुपाओ इनको और तुम दो इनको फकीरों को मोहताजों को, तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। यानी अगर तुम छुपा के देते हो तो फिर तो तुम सेफ हो गए ना, सेफ है ना ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें कोई रियाकारी का डर नहीं है। हमारे जैसे जो कमजोर लोग होते हैं, जो अगर नहीं अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके दिल में आ ही जाता है कि अगर लोग देख लें मुझे, तो फिर उनके लिए क्या बेहतर है कि वो छुपा के ही सदका दें। जो लोग अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं तो वो इट्स ओके, वो फिर कह सकते हैं हाँ भाई और लोग भी मुझे देख के देंगे, उनको पता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग कमजोर हो ना, वो छुपा के ने ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो भी तुम देते हो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, देना बेहतर है। अच्छा, क्यामत के दिन ना 7 लोगों को अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। पता है ना आपको सूरज कितनी करीब होगा उस दिन, लोग साये के लिए तरस रहे होंगे कि कहीं साया हो, कितनी सोचें गर्मी होगी, क्या हालत होगी लोगों की उस वक्त। पता है अल्लाह ताला के अर्श का साया 7 किस्म के लोगों को मिलेगा, और वो उन 7 में से एक बंदा वो है जो इतना छुपा के सदका करता है कि दायां हाथ देता है तो बाएं को भी खबर नहीं होती। इसका क्या मतलब है, किसी को भी नहीं पता चलता, इतना छुपा के देखा, देखो दोनों हाथ कितने करीब है, लेकिन एक हाथ ने दिया दूसरे को खबर ना हो, इसका मतलब क्या है, यानी करीब करीब भी किसी को पता नहीं चलता, जितना हद तक छुपा सकता है वो छुपाता है। अब जाहिर है किसी फकीर को देंगे, हो सकता है उसको तो पता चल ही जाए, लेकिन जितनी हद तक वो छुपा सकता है वो छुपा के देता है, उसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाना जो तेरे अर्श का साया पा सके। जिस दिन तेरे साये के सिवा कोई साया ना होगा। एक हदीस में आता है, बड़ी प्यारी हदीस है वो, मुस्नद अहमद में है, कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया था तो वो हिलने लगी थी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा करके उनको गाड़ दिया जिससे जमीन का हिलना बंद हो गया। फरिश्तों को पहाड़ जैसी इतनी सख्त चीज के ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई, तो उन्होंने पूछा बारी ताला, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ से ज्यादा सख्त चीज कोई है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ है, लोहा पहाड़ से ज्यादा सख्त है। पूछा इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ आग इससे भी ज्यादा सख्त चीज है, क्योंकि आग देखे ना लोहे को पिघला देती है। पूछा इससे भी ज्यादा कोई और चीज है? फरमाया हाँ पानी। पूछा इससे भी ज्यादा सख्ती वाली कोई और चीज है? फरमाया हाँ हवा, क्योंकि हवा पानी को भी उठा के ले जाती है ना। फरमाया इससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? फरमाया हाँ इब्ने आदम, जो इस तरह सदका करता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च की खबर भी नहीं होती। सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा ऊपर इब्ने आदम का वो सदका है जो वो छुपा के देता है, इतनी बड़ी चीज है वो कि पहाड़ों से भी ज्यादा बड़ी चीज, और लोहे से भी ज्यादा, और आग और पानी और हवा से भी ज्यादा, अल्लाह के नजदीक कितनी वैल्यूएबल चीज है। یہ ابن آدم کا صدقہ. تو تم دو اس کو فقیروں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. ایسا صدقہ تمہاری برائیوں کو تم سے لے جائے گا، دور کر دے گا. اور برائیاں کیا ہیں؟ گناہ تو ہیں ہی، بالکل صحیح ہے، گناہ ہمارے لیے برائیاں ہیں. اور ہمارے لیے برائیاں کیا چیز ہیں؟ مصیبتیں، پریشانیاں، مسئلے، بیماریاں، یہ سب برائیاں ہیں نا. اللہ ان کو ان میں سے دور کر دے گا، یعنی ساری کی ساری تو نہیں صدقے سے دور ہو جاتی، سارے گناہ تو نہیں معاف ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں تو نہیں ٹل جائیں گے، مگر من سیئاتکم، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو کتنی اچھی ہمارے لیے فائدے کی بات ہے کہ صدقے سے گناہ بھی مٹ جائے، مصیبتیں بھی کئی دور ہو جاتی ہیں، کئی پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں، کئی مسئلے دور ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، کئی انسان کی بیماریاں جو اس سے دور ہو جاتی ہیں صرف یہ صدقہ کرنے سے. کتنا، یعنی دنیا کا بھی کتنا فائدہ انسان کا، اور آخرت کا تو ہے ہی کہ من سیئاتکم، گناہ اگر لیا جائے اس سے مراد، تو گناہوں سے بھی انسان کی معافی ہو جاتی ہے، یعنی یہ کفارہ بن جاتی. صدقہ جو ہے نا کفارہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ رہی ہے، تعملون خبیر، بار بار اللہ کے علم کی بات آ رہی ہے کہ اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو تمہارا عمل ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جب تک کسی کو پتہ نہ چل جائے تو پھر کیسے ہوگا، پھر میرے نام اعمال میں کیسے لکھا جائے گا، یا اللہ کو پتہ نہیں میرے اعلان کرنے سے ہی پتہ چلے گا، جب تک مسجد کے سپیکر میں میرا نام نہیں آئے گا، یا پھر جب تک وہاں پہ پریزیڈنٹ کی جگہ میرا نام نہیں لکھا ہوگا، یا میرے نام کی کہیں بورڈ نہیں لگ جائے گا، تو کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ کسی کو تو واقعی نہیں تب تک پتا چلے گا، لیکن اللہ کو پتا چل گیا. اللہ باخبر ہے، جو تم بالکل چھپا کے کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے، اس کا کسی کو بھی نہیں پتا چلتا، وہ اللہ کو پتا چلتا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. یا اللہ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں، بہت معمولی کام، بڑی مشکلوں سے وہ بھی کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کو قبول فرما لینا، ہمارے نام اعمال میں ان کو قائم رکھنا، قیامت کے دن تک قائم رکھنا یا اللہ، اور ہمیں چھپا کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ریاکاری سے، ان کو من اور اذا سے محفوظ رکھنا. اللہ ہمیں خلاص عطا فرما، ہمیں خلاص عطا فرما، ہمیں خلاص عطا فرما، اور ہمیں حکمتیں عطا فرما.